वेद ने शिवांशा के सामने ये शर्त रखी थी कि उनकी शादी तभी रजिस्टर होगी जब वो आगे स्टडी करने के लिए तैयार होगी। हालांकि शिवांशा के ज़्यादा ज़िद करने पर वेद उसे परेशान करने के लिए उसके करीब ज़रूर आया था, लेकिन जैसा कि वेद को अंदाज़ा था, उसके बहुत ज़्यादा करीब आने पर शिवांशा बुरी तरह अनकम्फर्टेबल हो गई थी। शिवांशा को यही लगता था कि अगर उसे वेद के साथ कम्फर्टेबल होना है और आगे बढ़ना है तो धीरे धीरे वेद के करीब जाना होगा, लेकिन वो तो उसे नॉर्मल तरीके से भी आसानी से अपने पास नहीं आने देता था। सोने से पहले शिवांशा यही सोच रही थी कि उनके बीच की इस दूरी को कैसे खत्म किया जाए, और लेटे हुए उसे नींद आ गई थी। अगली सुबह तय समय पर वेद की आंख खुली तो वो उठते ही सबसे पहले शिवांशा के पास आया, उसे सही से ब्लैंकेट ओढ़ाया और फिर हल्के से उसके फोरहेड पर किस किया। वेद के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी और वो आंखों में प्यार लिए शिवांशा के चेहरे को देख रहा था। चलो आज तुम्हारी जिद को पूरा कर दिया जाए। आई होप कि मेरे इस स्टेप के बाद तुम्हारे दिल में किसी तरह की इनसिक्योरिटी ना रही हो, वेद ने मन ही मन कहा। शिवांशा को प्यार से सहलाने के बाद वो उठकर बाथरूम में चला गया था। कुछ देर बाद जब शिवांशा की नींद टूटी तो उसने वेद को आईने के सामने खड़ा हुआ पाया। वो बाहर जाने के लिए तैयार था। शिवांशा जल्दी से उठकर वेद के पास गई और हैरत भरे लहजे में बोली, आप ऑफिस जा रहे हो? डॉक्टर ने आपको रेस्ट करने के लिए कहा है, और वंश भैया ने भी। क्या आप थोड़ी देर घर पर रहकर चैन से आराम नहीं कर सकते? एनी टाइम आपको काम क्यों करना होता है? शिवांशा की शिकायत सुनने के बाद वेद ने उसकी तरफ देखा। वो जवाब में बोला, ऑफिस नहीं जा रहा, किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। काम से बाहर जा रहे हो या मेहका जी से मिलने जा रहे हो? शिवांशा ने दूसरी तरफ चेहरा करके बड़बड़ाते हुए कहा, लेकिन वेद ने उसकी बात को सुन लिया था। वेद ने उसकी इस नादानी पर हल्का सा हंसकर सिर हिलाया और बिना जवाब दिए बाहर जाने लगा। शिवांशा जल्दी से दौड़कर वेद के सामने जाकर खड़ी हो गई थी। बताइए ना कहाँ जा रहे हैं? शिवांशा ने विनती भरे स्वर में पूछा। जब वापस आ जाऊंगा तब बताऊंगा। खैर ये काम घर से भी हो सकता है, लेकिन मुझे घर में पूरे दिन रहना अजीब लगता है, वेद ने जवाब दिया। वो जानबूझकर शिवांशा को तंग करने के लिए उसे ठीक से कुछ नहीं बता रहा था। इससे पहले कि शिवांशा आगे कुछ पूछती, वेद ने उसे साइड किया और नीचे जाने लगा। लगता है इन्होंने कसम खा रखी है कि अपने घर वालों से मुझे डांट पड़वानी है। सबको यही लगेगा कि मैं इनका ध्यान नहीं रख रही, और क्या पता कोई ये बोल दे कि ये मेरी वजह से बाहर घूम रहे हैं, शिवांशा ने सर पकड़कर कहा। शिवांशा का ध्यान घड़ी की तरफ गया। नाश्ते का टाइम शुरू होने में थोड़ा ही वक्त बचा था। वेद बिना खाए घर से नहीं निकलने वाला था और ब्रेकफास्ट टेबल पर सब मिलने वाले ही थे। ये सोचकर शिवांशा जल्दी से कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई थी। उसे साड़ी पहनने में टाइम लगता है, यही सोचकर उसने जल्दबाजी में सूट निकाला और अपनी तरफ से पूरी जल्दी दिखाते हुए वो नीचे पहुंची। तब डाइनिंग टेबल पर सब मौजूद जरूर थे, लेकिन वहां पर वेद नहीं था। शिवांशा को देखते ही वंश ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर दिया था, क्योंकि थोड़ी देर पहले उसने वेद को रोकने की कोशिश की थी पर वेद बाहर चला गया था। इन सब के बीच उसे शिवांशा कहीं आसपास भी नहीं दिखाई दी जो वेद को रोके या फिर उसकी परवाह दिखाए। वंश सीधे सीधे कुछ कहकर फिर से वेद को डांटने का मौका नहीं दे सकता था, लेकिन उसके चेहरे के भाव साफ बता रहे थे कि वो शिवांशा से नाराज था। वेद चले गए क्या? शिवांशा ने हिचकिचाते हुए धीमी आवाज में पूछा। वंश पहले ही अपने गुस्से को काबू करके बैठा हुआ था, लेकिन शिवांशा के इस सवाल ने उसके रहे सहे सब्र को भी खत्म कर दिया था। वंश बोलने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाला था कि आराध्या ने उसका हाथ पकड़ लिया था और उसकी तरफ देखकर नामे सिर हिला दिया था। आराध्या ने फिर शिवांशा की तरफ देखा और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, हाँ उन्होंने ब्रेकफास्ट नहीं किया और बोला कि वो एक दो घंटे में वापस आ जाएंगे, शायद उन्हें जल्दी थी। आप आइए ना हमारे साथ बैठिए। नहीं मैं उनके आने का इंतजार कर लूंगी, आप लोग कंटिन्यू कीजिए, शिवांशा ने इतना ही कहा और फिर ऊपर जाने लगी, लेकिन उसके कानों में वंश की आवाज़ पड़ रही थी। आई डोंट अंडरस्टैंड, कोई इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है? कल शाम को मैंने अच्छे से समझाया था कि अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती है तो फिर मुझे बता दे, मैं नर्स हायर कर लूँगा या फिर मैं खुद भाई का ख्याल रखने के लिए तैयार हूँ। लेकिन नहीं, तभी नहीं भाई की नज़रों में बड़ा साबित होना था और सब कुछ खुद ही संभालना था। भाई इन्हीं के कमरे से बाहर आए और ये हमसे पूछ रही हैं कि वो चले गए क्या? वंश ने दांत पीसते हुए कहा। जैसे जैसे उसकी बातें शिवांशा के कानों में पड़ रही थी, उसकी आंखों में नमी उतर आई थी। वहीं वंश की बात सुनने के बाद आराध्या उसकी तरफ खा जाने वाली निगाहों से देख रही थी। तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपनी हरकतों से नव्यांशी को भी दो कदम पीछे छोड़ रहे हो? उनके चेहरे से साफ नजर आ रहा है कि उन्होंने भाई को रोकने की कोशिश भी की थी और वो जल्दबाजी में नीचे भी आई थी, लेकिन तुम्हारी फैमिली में तुम सब एक जैसे हो, खुद किसी की सुनना नहीं चाहते और सामने वाले पर ब्लेम डालने में एक मिनट नहीं लगाते हो। आराध्या ने वंश को अच्छा खासा सुना दिया था। अक्षत चुपचाप बैठा उनकी बातें सुन रहा था। वो धीरे से बड़बड़ाकर बोला,
लगता है मुझे शादी नहीं करनी चाहिए। अगर मेरी वाइफ आराध्या भाभी जैसी हुई तो मुझे हर छोटी बात पर डांटने वाली है, और शिवांशा भाभी जैसी हुई तो पूरे फैमिली के लोग मिलकर उसे डांटेंगे। अक्षत ने गहरी सांस ली और फिर वंश की तरफ देखा, जो अपनी गलती मानने के बजाय अभी भी आराध्या से बहस कर रहा था। अजीब है, अभी भी तुम मेरी गलती निकाल रही हो। रात को मैंने तुम सबके कहने पर बीच में नहीं बोला और शिवांशा भाभी पर यकीन भी किया, लेकिन अगली ही सुबह उन्होंने फिर से साबित कर दिया कि वो किसी लायक नहीं है। किसी और का तो पता नहीं, लेकिन भाई के कंपैटिबल नहीं है, वंश ने गुस्से में उबलते हुए कहा। अच्छा, तो वो भाई के कंपैटिबल नहीं है तो तुम ही उनकी कोई कंपैटिबल लाइफ पार्टनर क्यों नहीं ढूंढ देते हो? आराध्या ने ऊंची आवाज में कहा। उसे वंश की बातें सुनकर गुस्सा आ रहा था, जिसे अभी भी शिवांशा वेद के लिए सही नहीं लगती थी। ढूंढने की क्या जरूरत है, मिहिका जी है ना, अचानक वंश के मुंह से निकला। आराध्या और अक्षत आंखें फाड़े उसकी तरफ देख रहे थे। अक्षत ने जल्दी से कहा, शुक्र मनाइए भाई जो आपके मुंह से ऐसे वर्ड्स वेद भैया के सामने नहीं निकले। सच कहूं तो आपने बहुत गलत कहा है, भाभी उम्र में बहुत छोटी हैं और उन्हें नहीं पता कैसे चीजें करनी होती हैं। वो इतनी इनोसेंट है कि बिना गलती के भी डरी हुई माफी मांगती हुई घूमती रहती हैं। हाँ, लेकिन ये इसे समझ नहीं आएगा अक्षत, आराध्या उसकी बात पर सहमति जताते हुए बोली। मुझे अफसोस होता है कि इतनी बड़ी फैमिली होने के बावजूद भी हम शिवांशा भाभी को एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट नहीं दे पाए, और हमारे बीच वो कभी कंफर्टेबल होकर बात तक नहीं कर पाती हैं। और ऑफकोर्स ऐसा होना ही था, कुछ लोगों को उन पर शक करने से ही फुर्सत नहीं मिलती, आखिरी लाइन बोलते हुए आराध्या ने वंश की तरफ देखा। अब तुम लोग क्या चाहते हो, कि मैं अपनी जान दे दूं? ठीक है, मुझे मिहिका जी का नाम नहीं लेना चाहिए था, पर शिवांशा भाभी की हरकतों से कहीं भी नहीं लगता कि वो भाई की केयर करती हैं, वंश ने मुंह बनाकर कहा। तुमसे बहस करना बेकार है, शिवांशा भाभी का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारी हरकतों के बाद मुझे लगता है कि तुम मेरे कंपैटिबल नहीं हो, आराध्या ने उसे सुनाते हुए कहा और अपनी ब्रेकफास्ट प्लेट लेकर कमरे में जाने लगी।
वहीं उसका जवाब सुनकर वंश अभी भी अविश्वास से उसे जाते हुए देख रहा था। वंश ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और फिर अक्षत की तरफ देखकर कहा, आई हेट हर, दूसरों की वजह से मुझसे लड़ती रहती है, तुम शादी मत करना। हाँ, थोड़ी देर पहले मैं भी यही सोच रहा था, अगर करूंगा भी तो इस घर में अपनी वाइफ को बिल्कुल नहीं लेकर आऊंगा, बेशक मुझे सामने वाले के घर पर घर जमाई क्यों ना बनना पड़े। क्या पता मेरी वाइफ से कोई गलती हो जाए और वेद भैया के चलते आप तो उसकी जान ही ले लोगे, अक्षत ने मुंह बनाकर कहा, और फिर वो भी वहां से उठकर चला गया था। वंश ने अपनी मुट्ठियों को कसकर भींच लिया और फिर ऊपर की तरफ देखा, जहां वेद और शिवांशा का कमरा था। उसने गहरी सांस ली और खुद को तैयार किया। वंश ने एक प्लेट में ब्रेकफास्ट डाला और फिर ऊपर जाने लगा। वहीं एक पिलर के पीछे से आराध्या और अक्षत उसे छुपकर देख रहे थे। आराध्या ने धीरे से कहा, क्या लगता है मिस्टर अकड़ू माफी मांगेगा? जिस तरह से नाश्ते की प्लेट लेकर गए हैं, लग तो यही रहा है, पर मुझे लगता है कि वेद भाई को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, वरना उन्हें बुरा लगेगा। हम तो उन्हें नहीं बताएंगे, पर क्या लगता है भाभी भाई को ये बताएंगी? अक्षत ने आराध्या की तरफ देखकर पूछा। उन्होंने कभी अपनी पोजीशन का फायदा नहीं उठाया, और अगर उन्हें भाई को भड़काना होता तो अब तक वंश का इतना मुंह नहीं चलता। कई बार तो मुझे उनकी इनोसेंस को देखकर गुस्सा आता है, आराध्या ने जवाब दिया। अक्षत और आराध्या ऊपर की तरफ देख रहे थे और यही उम्मीद कर रहे थे कि इस बार वंश कोई गड़बड़ ना कर दे। तो वहीं वंश नाश्ते की प्लेट के साथ शिवांशा के कमरे में पहुंच गया था। कमरे का दरवाजा खुला था और उसने देखा कि शिवांशा काउच पर बैठकर रो रही थी। वंश ने कमरे का दरवाजा खटखटाया तो शिवांशा ने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और उसकी तरफ देखा। वो उठकर बैठ गई थी। वंश कमरे के अंदर आया और नजरें नीचे करके बोला, मैं बहुत ज्यादा बोल जाता हूँ और सच में मुझे अपने वर्ड्स का ख्याल नहीं रहता। काश मैं आपको समझा पाता कि भाई हमारे लिए कितना मायने रखते हैं, और उनको एक छोटी सी छींक भी आती है तो हम उनके लिए परेशान हो जाते हैं। मैंने उन्हें रोका था लेकिन उन्होंने मेरी नहीं सुनी, शिवांशा ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आंखों में ना चाहते हुए भी वापस आंसू आ गए थे। प्लीज आप इस तरह रोइए मत, मुझे और बुरा लग रहा है। ओके, आई एम सॉरी, और आगे से मैं कोई गलती करूं तो आराध्या की तरह आप भी मुझे डांट दिया करो। क्या आप मुझे ये नहीं कह सकती कि वो आपके हस्बैंड हैं और आपको भी उनकी फिक्र है? बस बात वहीं पर खत्म हो जाती और मेरा मुंह अपने आप बंद हो जाता, वंश छुंझलाते हुए बोल रहा था। उसके लिए ये एक्सेप्ट करना मुश्किल था कि उसकी गलती की वजह से शिवांशा रो रही थी। ऊपर से शिवांशा अभी कुछ कहने के बजाय आंसू बहा रही थी। लेकिन आपको खुद समझना चाहिए ना कि मैं उनका बुरा क्यों चाहूंगी। आपको पता भी है मुझे उनकी आपसे ज्यादा फिक्र रहती है, और ऊपर से आपके भाई इतने जिद्दी हैं कि मेरी कोई भी बात नहीं मानते हैं। उल्टा मैं कुछ कहने की कोशिश करती हूँ तो मुझ पर गुस्सा करके मुझे चुप करवा देते हैं। उनकी रिस्पेक्ट के चलते मैं तो उनके साथ जिद भी नहीं कर सकती। शिवांशा मासूमियत से वंश को सब कुछ बता रही थी। वो बोलते हुए बीच में हल्का हल्का सुबक रही थी। तब तो आपको आराध्या से क्लास लेनी चाहिए, क्या सच में भाई आपकी बिल्कुल नहीं सुनते हैं? वंश ने हल्के हैरत भरे लहजे में पूछा, जिस पर शिवांशा ने नामे सिर हिला दिया था। एक भी बात नहीं, वो तो किसी स्कूल के प्रिंसिपल की तरह हैं,
जहां उनके पास आने से पहले भी मुझे उनसे परमिशन लेनी पड़ती है, शिवांशा ने मुंह बनाकर कहा। तब तो आपकी हालत सच में बहुत खराब है, वंश अफसोस जताते हुए बोला। कमरे के दरवाजे पर अक्षत और आराध्या छुपकर खड़े हुए थे और उनकी बातें सुन रहे थे। उन्हें लगा था कि वंश के लिए माफी मांगना मुश्किल होगा और शिवांशा तो उसके सामने अपना मुंह भी ना खोल पाएगी। उनकी बातें सुनकर उन्होंने सिर पकड़ लिया था। शिवांशा ऐसे बात कर रही थी जैसे वो कोई उसकी बिछड़ी हुई सहेली हो। वो वेद की कंप्लेंट कर रही थी, जबकि वंश पहली बार किसी के मुंह से वेद की शिकायत सुनकर उसे डांटने के बजाय उल्टा उसका साथ देकर अफसोस जता रहा था। अक्षत और आराध्या को एहसास तक नहीं हुआ था कि कब वेद भी वहां उनके पीछे हाथ बांधकर खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। ठीक है, मैं किसी तरह की शिकायत नहीं कर रही हूँ, मैं उनसे प्यार करती हूँ तो मुझे उनके बिहेवियर से प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन आप सब लोग भी कम अत्याचार नहीं करते हो मेरे ऊपर। जब देखो सब मिलकर मुझे डांट देते हो, हर बात पर मेरी गलती निकालते हो, शिवांशा आगे बोली। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा, और मुझे सच में नहीं पता था कि वेद भैया आपके साथ ऐसा बिहेवियर रखते हैं। ठीक है, मैं आपके लिए उनसे बात करूंगा और उन्हें समझाऊंगा, वंश शिवांशा को दिलासा देते हुए बोला। शिवांशा ने उसकी बात पर हामी भरी। तभी वहां वेद की सख्त आवाज आई। अच्छा, तो तुम मुझे समझाओगे? ठीक है, मैं यहीं पर खड़ा हूँ, बोलो क्या कहना है। अचानक वेद को वहां पर देखकर उन सबके चेहरे का रंग पीला पड़ गया था। शिवांशा ने अपना चेहरा जल्दी से दूसरी तरफ कर लिया था, जबकि वंश से कुछ बोलते नहीं बन रहा था। वेद ने अंदर आने से पहले एक नजर अक्षत और आराध्या की तरफ देखा तो उन्होंने तुरंत अपनी नजरें झुका ली थी। उसकी नजरें ही उन सबको डांटने के लिए काफी थीं, और वो सबके सब एक साथ अटेंशन की पोजीशन में खड़े हो गए थे। वेद चलकर अंदर आया और अपने हाथ बांधकर वेद के सामने खड़ा हो गया था। बेचारा वंश, पहली बार उससे शिवांशा का साथ देने का सोचा और लेने के देने पड़ गए। वैसे वेद कौन से काम गया था, कोई आइडिया है आपको? चलिए पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा। अगले पाठ पर मिलते हैं और देखते हैं कि वंश का क्या हाल होता है।